इश्क और इल्म। पृष्ठ 41। मुस्लिम अध्यात्मवाद के अनुसार धार्मिक ज्ञान को इल्म कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। एक, इल्मुल मबादी। यह प्राथमिक ज्ञान होता है जो कुरान एवं हदीस के विषय में ज्ञान देता है। दो, इल्म उल कसीद। यह संपन्न ज्ञान धर्म अथवा मत के विषय में बताता है। तीन, इल्म उल मकाशफा। यह उद्घाटित ज्ञान है। इसे इल्म उफ हकीकत या सत्य अथवा परम ज्ञान भी कहते हैं। बुल्ले शाह केवल अंतिम प्रकार के ज्ञान में ही आस्था रखते हैं। प्रथम दो प्रकार के इल्मों के बारे में बुल्ले ने कहा है, इल्मो बस्करी ओ यार, इक्को अलीफ तेरा दरकार, अर्थात ओ दोस्त इल्म को बस कर, वर्णमाला का प्रथम अक्षर अलिफ ही काफी है। अलिफ का आकार एक अंक के समान ही होता है। यह परमात्मा की पृष्ठ 42 अद्वैतता को इंगित करता है। चूंकि बुल्ले को सत्य या ब्रह्म ज्ञान की लालसा थी, इसलिए वह अलिफ जो कि परमात्मा या ब्रह्म का चिन्ह है से अलग नहीं होना चाहते थे। उनके एक काफिये में उन्होंने कहा है, इक्को अलिफ पढ़ो छुटकारा आए, अर्थात मुक्ति के लिए केवल अलिफ पढ़ना ही पर्याप्त है। इस काफिये में बुल्ले शाह ने कहा है, अकेला अलिफ दो तीन और चार बन गया, फिर हजार लाख और करोड़ बनकर असंख्य बन गया। अकेले अलिफ का बिंदु अकेला ही है, अतः तुम अनेकों पुस्तकें पढ़कर मुसीबतों का बोझा क्यों उठाते हो? उन्हें तो जल्लाद बना दिया जाता है, फिर तुम्हें कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो अलिफ से आगे मत बढ़ो। शरिया और तकरीक का पूर्ण रूपेण पालन करने वाले बशर सूफी, सूफी बनने के लिए पहले शरीयत का ज्ञान होना आवश्यक मानते थे, किंतु बुल्ले जो कि बशर सूफियों में से एक हैं, का विचार ऐसा नहीं है। उनके अनुसार वेद कुरान ग्रंथ आदि तो सांसारिक मनुष्य के लिए है, न कि दैवी मनुष्यों के लिए। इनके अध्ययन द्वारा ईश्वरानुभूति नहीं की जा सकती, केवल मात्र भक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान ही लाभदायक होता है। बुल्ले की उक्ति अनुसार, हरफ इश्कदा इक्को नुक्ता काहे कुक ऊट लदावेंगा, अर्थात इश्क शब्द में केवल एक ही नुक्ता अर्थात बिंदु है, फिर तुम ऊटों पर बोझा क्यों लादो? वियोगावस्था, दैवी प्रेम या इश्क की अनुभूति करते समय बुल्ले को प्रायः वियोग का अनुभव होता है, इसलिए वह अपने महबूब या प्रियतम को निर्दयी और कठोर हृदय भी कहते हैं। उनके शब्दों में केह बेदर्दा संग यारी, रोवन अखियां जारो जारी, सानू गए बेदर्दी छड़े के, हिजरे संग सीने विच गड़के, जिम्मो चिंद नू ले गए कड़के, एह गल कर गए है सियारी। अर्थात बेदर्दी के साथ इश्क का या इश्क का क्या कहना, मेरी आंखें तो पृष्ठ 43 अविरल आंसू बहाती है, वह बेरहम महबूब मेरे सीने में वियोग रूपी कटार घोप कर मेरे प्राण निकाल कर ले लेत गया। उसने यह सब बड़ी निर्दयता पूर्वक किया। आशिक अर्थात प्रेमी को संसार की परवाह नहीं होती, वह सब प्रकार की निंदा सहन करता है। ईश्वरीय वियोग में उसे महान पीड़ा का अनुभव होता है। बुल्ले के शब्दों में, विरहो आ वड़िया विच वेहड़े, जोरो जोर देवे तन घेरे, दारो दर्दना बझो तेरे, मैं सजना बाज मारिनी हाँ, मित्र प्यारे कारणी मैं लोक अलाह में लैनी हाँ। अर्थात विरह ने मेरा आंगन में आकर मुझे अपने प्रकोप से बेहोश कर दिया। इसके अलावा पीड़ा दूर करने का अन्य कोई उपचार भी नहीं है। मैं तो साजन अर्थात प्रियतम के बिना मर रही हूँ। मैं अपने इष्ट मित्र के लिए लोगों के उलाहने भी सह रही हूँ। प्रेमी अथवा आशिक अधीर होकर पीड़ा से कराहता है। जाग दिया मैं घर विच मुट्ठी, कदी नहीं सा बैठी उठी। जिस दी सा मैं ओसे कुट्ठी, हुण की कर गया बेपरवाही। मेरे कियो चीर लाया माहे। अर्थात मैं तो जागते हुए भी अपने ही घर में लुट गई। मैं तो ईश्वर से कभी दूर नहीं गई, किंतु वह परमात्मा स्वयं ही जिसकी मैं हूँ मुझे पीड़ा दे गया। अब वह मेरे प्रति कैसा लापरवाह हो गया है। मेरा प्रिय इतने समय से क्यों नहीं आया। कभी कभी प्रेमी ईश्वर के उन गहन प्रेम सपनों को देखता है जिसमें ईश्वर पल भर के लिए दर्शन देकर ओझल हो जाता है। उस समय प्रेमी या आशिक दारुण पीड़ा से करा उठता है। वेखो ने प्यारा मैनु सुफने में छल गया, अर्थात देखो री मेरा प्रियतम मुझे स्वप्न में छल गया। संयोगावस्था। आशिक अर्थात प्रेमी के जीवन में एक समय आता है जब वियोग की रात्रि का अंत होकर संयोग की प्रातः का उदय होता है। उस समय प्रेमी आनंद विभोर हो नाच उठता है। वह दूसरे साधकों से मुबारकबाद लेना चाहता है। पृष्ठ 44। आओ संयम रल दियो बधाई, मैं वर पाया राजा माही। अर्थात आओ मित्रों सब मिलकर मुझे बधाई दो, क्योंकि मैंने अपने परम इष्ट रांझे को पा लिया है। हीर के समान यह रहस्यवादी भी अपने प्रियतम राजा की खोज में भटकता रहा। प्रियतम एक योगी के वेश में आया और प्रेमी स्वयं को रांझे अर्थात प्रियतम की योगिनी कहता है। बुल्ले के अनुसार रांझा जोगिड़ बड़ आया, वा सांगी सांग रचाया। रांझा जोगी ते मैं जुगियाड़ी, इस दी खातर भरसा पाड़ी। एवे पिछली उमर विहाड़ी, इस हुण मैनू भरमाया। अर्थात रांझा यानी प्रियतम योगी के रूप में आया है। बहुरूपिय ने बड़ा सुंदर नाटक रचाया है। राजा एक योगी है और मैं उसकी योगिनी हूँ। उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा पिछला जन्म तो व्यर्थ हो गया, उसने मुझे अब मोहित कर लिया है। बुल्ले शाह द्वारा अनुभूत प्रियतम सर्वव्यापी है। सयो हुड़ मैं साजन पायो नी, हर हृदय विच पायो नी। अर्थात हे साथियों, मैंने अपने उस साजन अर्थात प्रियतम को पा लिया जो घट घट वासी है। कभी कभी रहस्यवादी आश्चर्य से पूछता है, कौन आया पहन लिबास कूढ़े, तुसी पिछो नाल एक लास कूढ़े। अर्थात अरे लड़कियों, इस नई वेशभूषा में कौन आया है, जरा उससे प्यार से पूछो। परमात्मा के साथ संयोग के समय बुल्ला घड़ियाली को नौकरी पर से हटा देना चाहते हैं ताकि वह उनके वस्ल अर्थात संयोग के समय खलल न डाले। उनका कहना है, घड़ियाली देहो निकालनी, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे, मेरे मन दी बात चे पावे, हथो च सट्टे घड़ियाल नी। पृष्ठ 45। अर्थात घड़ियाली को निकाल दो क्योंकि आज मेरे प्रियतम घर आए हैं। घड़ियाली थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ियाल बजाकर मेरे मिलन की रात को घटा देता है। अगर वह मेरी बात समझता है तो वह अपने हाथ में से घड़ियाल फेंक दे। रहस्यवादी के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उसे संसार के सभी वस्तुओं में भगवान के ही दर्शन होते हैं। बुल्ले ने कहा है, मैं पाया है तय आप स्वरूप बताया है। कहूँ तुर्क किताब पढ़ते हो, कहूँ घोर घूंघट में पढ़ते हो, हर घर घर लाड लड़ाया है। अर्थात मैंने पाया है, हाँ पाया है, तुमने अपना स्वरूप बदल दिया है। कहीं तो तुम तुर्क बनकर ग्रंथ पढ़ते हो और कहीं हिंदू बनकर भक्ति में डूबे हो। कहीं लंबे घूंघट में स्वयं को छिपाए रहते हो, तुम घर घर में जाकर लाड लड़ाते हो। परम ज्योति पुंज प्रकट होने पर रहस्यवादी गूंगा बन जाता है, वह रहस्य नहीं खोल सकता। इस तथ्य को बुल्ले ने अपने दोहों में अभिव्यक्त किया है। जदो जाहिर होए नूर होरी, जल गए पहाड़ कोह तूर होरी। तदो दार चढ़े मंसूर होरी, ओथे शेखी मेंडी ना तेड़ी आए। मुंह आई बात ना रेंदी आए, जे जाहिर करा इसरार ताई। सब भूल जावन तकरार ताई, फिर मारन भुल्ले यार ताई। एथे मकफी गल सोहेंदी आए, मुंह आई बात ना रेंदी आए। अर्थात परम ज्योति प्रकाशित होने पर तूर पर्वत जलकर भस्मित हो गया। फिर मंसूर को फांसी मिली, वहां कोई शेखी नहीं बघार सकता। मैं बोले बिना रह नहीं सकता, यदि मैं रहस्य खोल दूं तो सब अपने अपने झगड़े भूल जाएंगे और अपने मित्र बुल्ले को मार डालेंगे। अतः यहाँ यही उचित है कि मैं रहस्य ना खोलूं। मैं बोले बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता, उसी प्रकार रहस्यवादी संयोग अवस्था से प्राप्त आनंद को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। बुल्ले के शब्दों में, जस वसल वसाल बहाएगा, ता गूंगे का गुड़ खाएगा, सिर पैर ना अपना पाएगा। पृष्ठ 46। अर्थात संयोगावस्था की अनुभूति वैसी ही होगी जैसे गूंगे को गुड़ के स्वाद की होगी। फिर अहम अर्थात द्वैत भावना समाप्त हो जाएगी। संयोग अथवा मिलन की प्रकृति का बुल्ले ने किंचित निम्नांकित शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। गल कर देसा, गल घुट देसा, अर्थात मिलन की स्थिति का वर्णन करते समय मेरा गला घुट रहा था। मिलन की अवस्था में बुल्ले शाह अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, केवल एकत्व और अद्वैत भावना ही रह जाती है। पूर्ण रूपेण आत्मभूत या एक लय हो जाने की अवस्था को ही फना या लहूत कहते हैं। बुल्ले के कथनानुसार, एक मैनू की होया मैं थो गई गवाती मैं, जियो कमली आंखें ले को मैनू की होया। मैं विचवेखन ते ने नहीं बढ़दी, मैं विचवासना तू। सिर तो पैरी तिकवी तू ही, अंदर बाहर तू। अर्थात मुझे क्या हो गया है, मुझसे से ममत्व लुप्त हो गया है। मैं एक पगली के समान कहता हूँ, ओ लोगो मुझे क्या हो गया है। जब मैं अपने अंतःकरण में झांकता हूँ तो मैं वहां स्वयं को नहीं पाता, तुम ही मेरे भीतर निवास करते हो। सिर से पैर तक तुम ही विद्यमान हो, भीतर और बाहर तुम ही हो। दो बुल्ला की जाना में कौन, अर्थात बुल्ले कहते हैं मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। खुदा अथवा ईश्वर भी रहस्यवादी के साथ आंख मिचौली खेलते हैं। बुल्ले के शब्दों में, तुसे छिपदेसी असी पकड़े हो, तुसी अजय छपनु तकड़े हो, अर्थात तुम छिप रहे थे लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया, पर फिर भी तुम बले बड़े बलपूर्वक स्वयं को छिपाते हो। बुल्ले शाह ने परमात्मा की वाह एवं अंतर दोनों प्रकार से अनुभूति की है। वाह्य तौर पर उसके नाना रूपों में तथा आंतरिक तौर पर परम प्रकाश के रूप में। हीर अर्थात जिज्ञासु या साधक रांझे अर्थात ईश्वर से मिलती है। बुल्ले की उक्ति में पृष्ठ 47। हीर रांझे दे हो गए मेले, भुल्ले हीर ढूंढे दी बेले, रांझा यार बगल विच खेले, मैनु सुध बुध रही न काई। अर्थात हीर और रांझे का मिलन हो गया है। हीर तो उसे ढूंढने के लिए भटकती रही, किंतु प्रेतम रांझा तो उसकी बगल में ही खेल रहा था। मैं तो अपनी सुध सब सुध बुध खो बैठी थी। समाप्त।